पहले तो आप सबको बेटा गुड इवनिंग मिड क्लास में। थैंक यू बेटा। ऑनलाइन बेटा सबको गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग बेटा।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
नमस्ते सर।
खुश रहो बेटा, खुश रहो।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। खूब बढ़िया। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। चलिए हम लोग बढ़िया बढ़िया गुड इवनिंग के साथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको सबको वेलकम करते हैं। एज पर आवर परंपरा कस्टम्स टुडे इज 7th जनवरी 2022 एंड टाइम इज अबाउट 4:50 इवनिंग इन लखनऊ। Today is Friday and I am Amit sir, with me Ankit sir. On behalf of this ALI Amit Lal Institute, we are going to present our live lecture, the third lecture of MPAC, Madhya Pradesh Accommodation and Control Act 1961. Ye 6 lectures ka series था जिसमें 3 लेक्चर्स डेडिकेटेड थे एमपी एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड और 3 लेक्चर्स जो रिलेटेड था वो डेडिकेटेड है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। इन 6 लेक्चर्स को अगर हम लोग सही से पढ़ लें और एक नोट्स बना लें, 6th लेक्चर अभी आने जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, बाकी पास्ट में हो गया था, प्रेजेंट कुछ होता ही नहीं है। आइदर इट में बी पास्ट और इट में बी फ्यूचर, क्योंकि कोई पल रुकता नहीं है, या तो वो पास्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में तो कभी हम लोग रह ही नहीं सकते क्योंकि तुरंत वो घटित हो जाता है। तो अब 6th लेक्चर, लास्ट लेक्चर या 3rd लेक्चर आप कहें तो एमपीएससी का है। इसके पहले हम लोगों ने एकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट देखा मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा, इसलिए इस बार हम लोग डिसाइड किए कि इसको भी पढ़ा जाए। और हो सकता है इसी बहाने बच्चे पढ़ ले, वरना वो आलस करते हैं, सब आलस करते हैं, अरे इतनी बेयर एक्ट कौन पढ़े। तो इसीलिए अब कि हम लोग उनका खुद ही बेयर एक्ट पढ़वा दें तो आपको एक बार रिविजन हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर जो एमपीएससी का था, एकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट, उसमें हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी। इसका कमेंसमेंट डेट 30th दिसंबर 1961। वेरी गुड। तो हम लोगों ने कमेंसमेंट डेट देखा, चैप्टर्स देखे, 7 थे, सेक्शन 51 टोटल है इसमें। फिर डिफिनीशन पे आ गए और इसका मेन था कि जो अर्बन एकोमोडेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें रेंट को बेसिकली कंट्रोल करना, इविक्शन ऑफ टीनेंट को कंट्रोल करना, कैसे निकाला जाए, और फिर जो बचा है वो कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस बचे हैं जिसमें अलॉटमेंट वगैरह भी है कि अगर वेकेंट बिल्डिंग है तो उसको अलॉट किया जाए। तो आज जो बचा खुचा है वो सब एंड करना है, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा सिनॉप्सिस में, क्योंकि बचा भी हुआ बड़ा पार्ट है। सेकेंड चैप्टर था रिलेटेड टू रेंट, आप सबको याद होगा व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, हु विल डिसाइड आरसीए, आरसीए के लिए प्रोविजन 28 में, ये सब हम लोगों ने देखा कई बार, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं, रटवा रहे हैं आप सबको। और उसके बाद फिर आरसीए कैसे डिसाइड करेगी, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, आप एक्सेस क्लेम नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, अगर आप एक्सेस क्लेम करेंगे, सेक्शन 6 कहता है नो पर्सन कैन एग्री टू क्लेम मोर देन द स्टैंडर्ड रेंट। अब अगर कर देंगे, अगर कर दिए, अगर ये कर दिए, अगर वो कर दिए, तो उसके लिए पेनाल्टी क्लास है 43 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाने चल रहे हैं। हमने कहा था अभी रुकेंगे हम लोग लास्ट में, पेनाल्टी क्लास यानी सेक्शन टू सेक्शन चलेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे। फिर हम लोग ने 3rd चैप्टर पढ़ा और उसमें देखा सेक्शन 12 ना, याद है कल पढ़ाए थे, ढेर सारा 14 मेरे ख्याल से ग्राउंड्स थे फ्रॉम स्मॉल ए टू P, ना सेक्शन 12 सब क्लास 1 स्मॉल ए टू पी, और ढेर सारे ग्राउंड पढ़े की, और वो ग्राउंड वही थे लगभग जो हम लोगों ने सेक्शन 20 ऑफ यूपी रेन कंट्रोल एक्ट में पढ़ा था। तो अब उसमें था कि बिना पूछे सबलेटिंग कर दिया, एरियर्स ऑफ रेंट, सबलेटिंग डैमेजेस सेक्टर। फिर कहा ये सेक्शन 12 वाला सूट कहाँ फाइल होगा, सिविल कोर्ट में ना, तो सेक्शन 12 वाला एक सूट होगा विच यू हैव टू फाइल इन अ सिविल कोर्ट, और इसमें फिर अपोजिट पार्टी जब सूट है तो अपोजिट पार्टी जब आपकी ओर से प्लेंट आएगा तो अपोजिट पार्टी के पास पूरा मौका है कि डिफेंस करे ना, लेंथी प्रोसेस होगा। मगर कहा प्रोविजो जोड़ा कि जो 23 जे वाले लैंडलॉर्ड हैं, द लैंडलॉर्ड विच फॉल अंडर द सेक्शन 23 जे, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, विडो, डिसेबल एटसेट्रा, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन रख दिया गया है, उनको इस लेंदी प्रोसेस में नहीं आना है, वो चाहे तो सीधे स्पेशल प्रोविजंस पे आए। और स्पेशल प्रोविजन कहता है कि हम लोग पढ़ा था फिर सीधे क्या फाइल कर दो 23A में अप्लीकेशन, और भी किसके यहाँ, RCA के यहाँ, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के यहाँ, यू हैव नॉट टू फाइल अ सूट, यू हैव ओनली टू फाइल एन अप्लीकेशन, और उसमें भी अपोजिट पार्टी यानी टीनेंट के पास राइट टू कंटेस्ट नहीं है जब तक कि 15 डेज में, कल याद होगा ना, 15 डेज में वो अपना डिफेंस ना दे दे कि साहब हमको आप मौका दो, नहीं तो राइट टू कंटेस्ट है ही नहीं। तो बड़ा अच्छा प्रोविजन, और मैक्सिमम 6 मंथ का एक डेट था कट ऑफ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि विद इन दिस टाइम पीरियड अगर डिफेंस अलाउ भी हो गया तो भी 6 महीने के भीतर सब कुछ फाइनल कर देना है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर उस सेक्शन 12 वाले डिसीजन की तो अपील होगी, बट ऑब्वियसली बात है सूट है तो क्या आएगा, डिग्री, और डिग्री क्या होती है, अपील, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील। मगर ये जो 23 है इसके लिए स्पेशल प्रोविजन था ना, कल पढ़े थे ना आप लोग, ई था ना, रिवीजन कहाँ जाएगा इसका, हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधे हाई कोर्ट में रिवीजन जाएगा, टाइम पीरियड भी प्रिस्क्राइब किया है, सब कुछ कर दिया इसमें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कल हम लोगों ने थर्ड ए चैप्टर भी पढ़ा था। अब आज का जो रिमेनिंग है 24 ऑनवर्ड्स, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं हम, और 24 यानी मान लीजिए कि एक अंडरस्टैंडेबल चीज है, एक ऐसे भी दिमाग लगाया जाए और पहले दिमाग से सोचा जाए, एक लॉजिकल चीज है कि टीनेंट किराया देना चाह रहा है बट लैंडलॉर्ड उसको ले नहीं रहा है, लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेंट फ्रॉम टीनेंट, तो टीनेंट क्या करे, बट ऑब्वियस ही बात है कहाँ जमा करा दे, RCA कोर्ट में, तो तब जब कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, और नहीं तो कहाँ जमा कर दे, RCA। और अच्छा टीनेंट ने दिया भी किराया और 2 महीने बीत गए, लैंडलॉर्ड रिसिप्ट ही नहीं दे रहा, तो रिसिप्ट नहीं आ रहा तो भी किससे पूछे, वो बोले वही RCA। तो ये सब प्रोविजन अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि अगर रेंट नहीं ले रहा है, ले भी रहा है और रिसिप्ट नहीं दे रहा लैंडलॉर्ड, तो कहाँ से कैसे डील करें 24 ऑनवर्ड्स। तो आई गिव कमांड टू अंकित सर टू स्टार्ट विद सेक्शन 24 और इंपॉर्टेंट चीजों को टिक लगवाते चलें, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बताइए 24
चैप्टर 4 डिपॉजिट ऑफ रेंट सेक्शन 24 रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड एवरी टीनेंट Subsection 1, every tenant shall pay rent within the time fixed by contract or in the absence of such contract by the 15th day of the month next following the month for which it is payable.
ठीक है, 15 day तक आप एक तो rent दे दें और फिर उसको receipt मिल जाना चाहिए, ठीक है।
Subsection 2, every tenant who makes a payment of rent to his landlord shall be entitled to obtain forthwith from the landlord or his authorized agent a written receipt for the amount paid to him signed by the landlord or his authorized agent.
ठीक है।
Subsection 3, if the landlord or his authorized agent refuses or neglect to deliver to the tenant a receipt referred to in subsection 2, the rent controlling authority may on an application made to it in this behalf by the tenant within 2 months 2 months from the date of payment and after hearing the landlord of his authorized agent by order, direct the landlord or his authorized agent to pay to the tenant by way of damages such sum not exceeding double the amount of rent paid by the tenant and the cost of the application, and shall also grant a certificate to the tenant in respect of the rent paid. Deposit of rent by tenant, section 25.
अच्छा देखिए पहले 24 क्या कह रहा था कि अगर हमने तो नहीं ले रहा और हमने जमा भी किया और तब भी लैंडलॉर्ड ने रिसिप्ट नहीं दिया तो फिर कहाँ हम लोग जाएं आरसीए के पास. 2 महीना बीतने के बाद भी रिसिप्ट नहीं दिया तो आप लोग आरसीए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाएं और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी फिर ऑर्डर करेगी और उसके बाद भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर लैंडलॉर्ड को कहा जाएगा कि वो डबल अमाउंट जो भी उसने पे किया है, मान लीजिए उसने 100 रुपया दिया और उसका आपने रिसिप्ट नहीं दिया तो 100 का दुगना टीनेंट को क्या दिलवा देगी, कंपनसेशन. तो ध्यान रखिए 24 उसी प्रोविजन की बात करता है कि जब लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दे रहा है रिसिप्ट देने से या किराया लेने से. ठीक है 25.
डिपॉजिट ऑफ रेंट बाई टीनेंट सब सेक्शन 1. वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेंट रेंडर्ड बाय टीनेंट विद इन द टाइम रेफर्ड टू सेक्शन 24 और रिफ्यूजेस और निगलेक्ट टू डिलीवर अ रिसिप्ट रेफर्ड टू देयर इन और वेयर देयर इज अ बोना फाइड डाउट एज टू अ पर्सन और पर्सन टू हूम द रेंट इज पेबल द टीनेंट मे डिपॉजिट सच रेंट विद द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सच डिपॉजिट ऑफ रेंट शैल बी अ फुल डिस्चार्ज ऑफ द टीनेंट.
तो ध्यान रखिए 25 कहता है बट ऑब्वियसली बात वही लॉजिकल कि भाई अगर लैंडलॉर्ड रिसीव नहीं कर रहा है या डाउट हो गया कि अब मान लीजिए ए लैंडलॉर्ड था, ए की डेथ हुई, अब उसके 3 बच्चे हैं तो अब हम किसको रेंट दे दें, तो ऐसे केस में डाउटफुल केस में भी कहां जमा करे, आरसीए के पास, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाकर रेंट जमा कर दीजिए. 25 ये कह रहा. तो पूछा जा सकता है कि भाई अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दे टू एक्सेप्ट द रेंट तो टीनेंट कहाँ जमा करे रेंट, टू द आर सी ए. और चलिए
इसका सब सेक्शन 4 देख लीजिए सीधे 25 का, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 4.
सेक्शन 25 एमपीएसी का सब सेक्शन 4.
इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द विड्रॉल ऑफ एनी डिपॉजिट ऑफ रेंट द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इफ सेटिस्फाइड that the applicant is the person entitled to receive the rent deposited under the amount order the amount of the rent to be paid to him in the manner prescribed and such payment of rent shall be a full discharge of the rent controlling authority from all liability to pay rent to the landlord.
ठीक है तो देखिए कह रहा है कि मान लीजिए टीनेंट ने कहाँ जमा करा दिया, RCA के यहाँ. अब आरसीए के यहाँ से लैंडलॉर्ड चाहे तो विड्रॉ कर सकता है. लैंडलॉर्ड चाहे भाई वो किराया जो लैंडलॉर्ड को मिलना चाहिए वो कहाँ जमा हो गया, वो आरसीए के पास जमा हो गया. तो अब लैंडलॉर्ड अप्लीकेशन देके आरसीए से वो किराया ले सकता है और जब वो ले लेगा तो माना जाएगा फुल डिस्चार्ज हो गया, टीनेंट की लाइबिलिटी कंप्लीट हुई. तो अगर लैंडलॉर्ड डिफ्यूज करते हैं या कोई डाउट है डिस्प्यूट है तो वो किराया वो जो रेंट है इट मस्ट बी डिपॉजिटेड टू आरसीए. And then landlord, the claimant can by application withdraw such amount from RCA. RCA से वो withdraw कर लेगा. ठीक है तो सब section 425 का important था.
अब सब section 5. If at the time of filing the application under sub section 4 but not after the expiry of 30 days from the receiving the notice of deposit, the landlord or the person or persons claiming to be entitled to the rent complains or complain to the rent controlling authority that the statement in the tenant's application of the reason and circumstances which led him to deposit the rent are untrue. The rent controlling authority, after giving the tenant an opportunity of being heard, may levy on the tenant a fine which may extend to an amount equal to 2 month rent if the rent controlling authority is satisfied that the said statements were materially untrue and may order that a sum out of the fine realized be paid to the landlord as compensation.
अच्छा अगर आरसीए को लगता है कि टेनेंट ने झूठ बोला था, उसने जो कंप्लेंट किया था वो फ्रिवोलस है और विदाउट रीजन वो आरसीए के यहाँ जमा कराया है, तो फिर टेनेंट से क्या कहेगा कि तुम कंपनसेट करो लैंडलॉर्ड को, और वो भी कितना कंपनसेशन, 2 मंथ्स रेंट। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि ये आप लोग अपने आप ना पढ़ते, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, हम लोग एक बार पढ़ा दे रहे हैं तो आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। बाकी इसमें कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर मस्ट बी टीचर आप प्रिंसिपल, बट हम लोग फैक्चुअल भी पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग यही फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा तभी प्री निकलेगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम टिक करा रहे हैं। 24 हो गया, 25 हो गया, ये वो चैप्टर चल रहा है कि अगर इफ़ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रेंट फ्रॉम टीनेंट और रिफ्यूजेस टू गिव द रिसिप्ट, तो व्हाट इज रेमडी टू द टीनेंट, टीनेंट के पास रेमडी क्या है। तो सारी रेमडी लाइज करती है बिफोर आर सी ए, ठीक है।
Next, अब इसका सब सेक्शन 6 देख लीजिए 25 का। द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे ऑन द कंप्लेंट ऑफ द टीनेंट एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द लैंडलॉर्ड ऑफ बीइंग हर्ड लेवी ऑन द लैंडलॉर्ड अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू 2 मंथ्स रेंट इफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द लैंडलॉर्ड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट।
अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, 5 और 6 वाइसी वर्सा है ना, टीनेंट गलती कर रहा है तो उससे भी कितना दिलवा रहा है लैंडलॉर्ड को, 2 मंथ्स रेंट, और लैंडलॉर्ड की अगर गलती है तो भाई जिसकी गलती होगी वो दूसरे को कितने मंथ का रेंट दे, 2 मंथ्स का रेंट। तो ये बस दोनों में, 5 और 6 में आप दोनों को टिक कर सकते हैं, 5 में टीनेंट की फॉल्ट है और 6 में लैंडलॉर्ड की, दोनों ही केस में 2 मंथ्स रेंट एज कंपनसेशन आरसीए दिलवाएगा। और चलिए नेक्स्ट सेक्शन,
सेक्शन 26 टाइम लिमिट फॉर मेकिंग डिपॉजिट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट,
ये है इम्पोर्टेंट, अगर ना आया छोड़ते चलिए, हाँ बहुत है अभी आगे, 26 फिलहाल लेफ्ट कर दीजिए, हाँ 24 25 पढ़ लिया, हाँ
बस ये लगा लीजिए एक निशान जो है सबसेक्शन 1 में लगा लीजिए, नो रेंट डिपॉजिट सबसेक्शन 1 इसका कहता है सेक्शन 26 का, no rent deposited under section 25 shall be considered to have been validly deposited under that section unless the deposit is made within 21 days of the time referred to in section 24 for payment of the rent. 21 days kar lijiye isko,
factual hai sir.
Section 27 saving as to acceptance of rent and forfeiture of rent in deposit, ha isme nahi aata,
27 to ekdam nahi maine dekha,
27 chod diye, अब चैप्टर 5।
अच्छा, तो देखिए इस चैप्टर में 4 में हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है 25 पे, इस चैप्टर में किस पे फोकस किया है, किस सेक्शन पे, 25 पे ज्यादा फोकस किया, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा ऑनलाइन बेटा सबको आवाज आ रही है ना,
यस सर,
भाग भाग तो नहीं गए तुम लोग, जैसे बच्चे करते हैं ऑन करके निकल लो अपना, हाँ रहा करो बेटा, है ना, तुम लोग रहोगे तो अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, है ना, मगर वो जब सिलेक्शन के बाद मिठाई के साथ फोटो खींचती तब हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो अब फोटो फ्रेम में आना चाहते हो, मतलब फोटोग्राफ हमारे साथ, हमारी वैल्यू बहुत है बेटा, हमारे साथ फोटो सेल्फी हम लेते हैं या लेने देते हैं, केवल कब आप ले सकते हैं, व्हेन यू गेट सेलेक्टेड, बहुत बड़ी शर्त है, इतना तो मुझे लगता है वो सेलिब्रिटियों की नहीं होगी ना, उधर अभी कैट की शादी हुई है, बुलाया नहीं गया था हम लोग को, वो एक अलग बात है, और हम लोग को पूरी सूचना थी, और कैट ने एक शायद विकी से किया है ना, विकी ब्लैक है ना,
ब्लैक
डार्क कॉम्प्लेक्शन है कैट, इसीलिए सलमान ने नहीं पकड़ा, देखो सलमान खुद हैंडसम था, तो इसीलिए कैट को उसने, तो अब ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, चलो हाँ पता रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। 28 आरसीए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, इतना ज्यादा नाम, पूरा गोल गोल घूम के किसके पास घड़ी घूम रही, कहीं कोई डिस्प्यूट हो किसके पास जा रहे हो, आरसीए 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 को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। और 28 में कहा गया है कलेक्टर अपॉइंट आरसीए विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द पर्सन हु हैज नो रैंक नॉट रैंक बिलो द डिप्टी कलेक्टर, इट इज इन 28। उसके बाद उनकी पावर्स हैं वो देख लो, 28 के बाद इंपॉर्टेंट
चैप्टर 5 अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज देयर पावर्स फंक्शंस एंड अपील्स सेक्शन 28
तो हम लोग पढ़ाई
हो गया, ठीक है।
अपील
क्लास अब 29 है, पावर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वही है जो कि सिविल
कोर्ट की पावर होती है ना, वो कोर्ट की तरह वर्क करता है। एग्जीक्यूशन की पावर इनके पास है, समन इशू ये करते हैं, यानी अच्छा सिविल कोर्ट की पावर जब भी कहा जाए तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, थोड़ा नॉलेज आप लोग को दे दें। जब भी कहा जाए सच अथॉरिटी हैज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट के पास क्या पावर होती है, पावर टू समन, क्या क्या चीजें होती हैं, पावर टू समन, पावर टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, पावर टू पनिश फॉर कंटेप्ट, 228 की पावर दे दी जाती है। और अगर झूठ बोलोगे तो इट हैज अ पावर टू मेक लाइबल फॉर परजरी ना, गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो जब भी कहा जाए ना कि इस दिस अथॉरिटी हैज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो यानी वो समनिंग की पावर पा गए, उनके सामने अगर झूठ बोलोगे तो फॉल्स एविडेंस की सजा देंगे, और अगर उनके साथ उनकी प्रोसीडिंग में इंटेंशनल कुछ डिसरप्शन करोगे, डिसरप्ट करोगे उनकी प्रोसीडिंग को, तो सेक्शन 228 आईपीसी में पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। तो 193/228 आईपीसी की पावर मिल जाती है जब भी आप कहते हैं दिस अथॉरिटी हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो ये वही पूरा बता रहा, छोड़ दीजिए। 31 पे आ जाइए,
सेक्शन 31 अपील टू डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज।
अब देखा जाए कि ये सब जो ना आरसीए वगैरह करेंगे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का, जितना ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं अभी 25 में पढ़े, 24 में पढ़े, और उसके पहले ढेर सारे ऑर्डर पढ़े थे, इन ऑर्डर्स की क्या अपील होगी, तो होगी तो किसके यहाँ होगी, तो देखिए। हाँ,
एन अपील सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 अपील टू डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एन अपील शैल लाइ फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर दिस एक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैविंग टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द जज एंड द डिसीजन ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी फाइनल।
बहुत बढ़िया, देखिए कह रहा जितना अभी तक आरसीए का हम लोग ऑर्डर देखे हैं, जितना भी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का आपने हर सेक्शन में ऑर्डर पढ़ा, उन ऑर्डर्स का हम लोग क्या है, तो वो ऑर्डर, बट दीज ऑर्डर आर अपीलेबल, और कहाँ अपील जाएगी, 31 में कह रहा है डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल एज द केस में भी। तो ध्यान रखिए 31 अपील बहुत पूछता है, तो आरसीए का जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर की अपील होगी सेक्शन 31 में, यानी आरसीए का 2 महीने कंपनसेशन दीजिए, तो साहब हम एग्रीव्ड हैं, हमें नहीं लग रहा सही आपका ऑर्डर है, तो हम आरसीए की इस ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ अपील कर देंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करेंगे। अच्छा कहीं तुम 90 डेज एक टिक, चलो भी आएगा, हाँ वो तो कल कर लिए हम लोग, हाँ रिवीजन का, ठीक है। अच्छा सेकेंड अपील हम लोग हमेशा जानते हैं सिविल में, अगर फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गई है तो सेकेंड अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट। तो इसमें लिखा है सेकेंड अपील वहीं जाएगी जैसा सीपीसी प्रिस्क्राइब करती है, और सीपीसी कहती है अगर फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज को हुई है तो सेकेंड अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट, ठीक है। और थर्ड अपील कहाँ जाएगी बेटा, कोई बड़ों वाला सवाल पूछे नहीं? अच्छा थर्ड अपील बता रहे, नहीं होती सीपीसी में थर्ड अपील का प्रोविजन, नहीं फोर्थ फिफ्थ का हम नहीं जानते,
होना चाहिए उसे, एक सुप्रीम कोर्ट जब बना रखे हैं तो थर्ड अपील भी होनी चाहिए।
हाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ चलिए।
सब सेक्शन 2 एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी,
ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन पीरियड कितना दिया है, 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन पीरियड टू फाइल एन फर्स्ट अपील from the order of RCA to district RADJ is 30 days from order. Very good. Huh.
Provided that in computing the period of 30 days, the period required for obtaining a copy is छोड़ दिए तो है
ये तो limitation है पढ़ा देंगे तो बता देंगे exclusion होता ना जितने दिन में आपको order की copy नहीं मिली जिस दिन court बंद है वो सब क्या होता है इसमें exclude कर देते हैं जिस दिन order आया वो date भी exclude किया जाता है ये तो limitation है पढ़ाएंगे तो बताएंगे
provided further that the judge may for sufficient reason allows an appeal after the expiry of the said period
ठीक है वो सब तो उनका अपना right है
Second appeal, section 32. A second appeal shall lie against any order passed in first appeal under section 31 on any of the following grounds and no other, namely one, that the decision is contrary to law or usage having the force of the law, or second, that the decision has failed to determine some material issue of law, or third, that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act. Which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon merits.
Main hota second appeal, dhyan rakhiye hamesha. Second appeal hamesha substantial question of law pe hi aati hai. Jab CPC padhiyega section 100, to second appeal kisi bhi matter mein keval law ke point pe aayegi, fact ke point pe. Kyunki fact court ke liye aap first appeal ho gayi. Ab second appeal high court ko thodi na aap फैक्ट के मैटर में बोलेंगे, लॉ के मैटर में बोलिए, तो लॉ के मैटर पे ही अपील होगी. तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके पहले पढ़ा कि अगर आज का जो टॉपिक था उसको फिर से एक बार रिवीजन, 24-25 इम्पॉर्टेंट था, जो चैप्टर 4 था उसमें कह रहा था अगर लैंडलॉर्ड पेमेंट ना ले टीनेंट से, रेंट ना ले या रिसिप्ट ना दे, तो वी हैव अ रेमेडी अंडर 25 कि भाई आरसीए से आपके यहाँ जमा करा दो, आरसीए आपको कंपनसेट भी कराएगी 2 months का इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ आइदर पार्टीज. ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया. फिर हम लोगों ने कहा ये आरसीए जो हैं इनका क्या अपॉइंटमेंट है 28 में, पावर वही जो सिविल कोर्ट के हैं वो जनरल है. फिर इस आरसीए के ऑर्डर्स की अपील 30 days में करना होगा हम लोग को डीजे या एडीजे के यहाँ. सेकेंड अपील वही होती है जैसा सीपीसी प्रिस्क्राइब करती है, और ये केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कुछ यूसेज और कुछ इस तरह के यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही आती है. अब आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं. हाँ, नेक्स्ट पे आ जाइए.
अच्छा, इसका वो 34 सेक्शन कहता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन, बस इतना से जान लीजिए. और 35 कहता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर. सेक्शन बस याद रखिएगा, पूछ सकता है. अब आते हैं हम लोग चैप्टर सिक्स कहता है प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड पेनालिटीज.
अच्छा, अब आ रहा है इसको आराम से करने वाला. देखिए, अभी तक हमने ज़्यादा आपसे नहीं कहा, केवल 24-25 आपसे हमने कहा था, इधर 28 बोला और केवल हमने कहा 31 पढ़ लीजिएगा, 24-25, 28 और 31, क्योंकि हम भी जानते हैं एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है. अब आ रहे हैं, अब इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि कुछ मिसलिनियस आ गया. कैसे, क्या चीज़ कि मान लो कि हाँ पढ़ ही दीजिए, वो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो मकान मालिक किराएदार में झगड़ा होता तो पहले काम क्या करता मकान मालिक, बिजली काट देता, पानी उड़ा देता है ना, ये सब तो ये कह रहा है ना, इसमें बता रहा है. अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहो, तो कह रहा है ये सब टुच्ची हरकतें मत करो, है ना, सीधे कहाँ जाओ, आरसीए के पास यही काम के लिए बैठा है, तो देखिए वही सब सॉल्व करेगा. हाँ बताइए, अब इसमें इम्पोर्टेंट आ गया
सेक्शन 37 लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप एकोमोडेशन इन गुड रिपेयर.
मतलब सही ठीक ठाक रखो, चूना कली या जो भी मतलब वाइट वॉशिंग वॉशिंग है वो सब कराते रहिए, वही ये बता रहा. हाँ, 37
एवरी लैंडलॉर्ड शैल बी बाउंड टू कीप द एकोमोडेशन इन गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर.
ठीक है.
सब सेक्शन 2 If the landlord neglects or fails to make within a reasonable time after notice in writing any repairs which he is bound to make under subsection 1, the tenant may make the same himself and deduct the expenses of such repairs from the rent or otherwise recover from them from the landlord.
अच्छा, अगर landlord की duty है कि भाई आप कमा रहे हैं, तो आपको उसको maintain रखना चाहिए। अगर कोई defect है, default है, और landlord साहब उसको नहीं कर रहे हैं, तो tenant एक reasonable notice देने के बाद उसको खुद repair करा ले, और फिर अपना जो rent है, उसमें से उसको detect कर ले। मगर उसकी भी एक limit है ना, कि इतना थोड़ी ना होगा कि आप इतना ज़्यादा repairing करा दो और सब जगुआर की फिटिंग लगा डालो, सब कह दो नहीं नहीं अब साहब हो गया हम इसी में रहेंगे, हमारे लिए फिटिंग नहीं आपने सब मार, तो ऐसा नहीं है। केवल 1/12 यानी एक महीने किराए के बराबर ही आप इस तरह का काम करेंगे। अभी देखिए बता रहा है,
प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शेल नॉट एक्सीड 1/12 ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर।
वो बेचारे 12 महीने किराया मिलना, 12 महीने आप मेंटेन करवा रहे हैं उससे, तो भी कहेगा ना काहे के लिए हम मकान बनवाए हैं, तुम ही को ना दे दें, तुम अपना करो। तो इसी सब ध्यान रखते हुए इसमें एक लिमिट लगा दी गई कि भाई टेनेंट साहब रिपेयरिंग खुद करा लें, मगर वो जो कॉस्ट होगी रिपेयरिंग की वो 1/12 यानी एक महीने के किराए के बराबर। 1/12 ऑफ एनुअल रेंट का मतलब कितना हुआ, एक महीने का किराया। तो ध्यान रखिए 1/12 ऑफ द एनुअल रेंट। हाँ,
सबसेक्शन 3, वेयर एनी रिपेयर्स विदाउट विच द एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल और यूजेबल एक्सेप्ट विद अनड्यू इनकन्वीनियंस आर टू बी मेड एंड द लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट्स और फेल्स टू मेक देम आफ्टर नोटिस इन राइटिंग द टेनेंट मे अप्लाई टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर परमिशन टू मेक सच repairs himself and may submit to the rent controlling authority an estimate of the cost of such repairs and thereupon the rent controlling authority may after giving the landlord an opportunity of being heard and after considering such estimate of the cost and making such inquiries as it may consider necessary by an order in writing permit the tenant to make such repairs at such cost as may be specified in the order and it shall thereafter be lawful for the tenant to make such repairs himself and to deduct the cost thereof which shall in no case exceed the amount so specified from the rent or otherwise recover it from the landlord.
ध्यान रखिए अब 1/12 तक तो चलता है, उसके ऊपर का कास्ट आ रहा है, ऐसा कुछ रिपेयरिंग है जिसमें कास्ट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर टीनेंट अपने मन से ना कराए, किससे परमिशन ले, आरसीए। अगर लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया है तो किससे फिर अप्लाई करे, आरसीए के पास जाए, पूरा उसमें जितना भी उसका एस्टिमेट है प्रॉक्स वो जमा कराए, और जब आरसीए ऑर्डर कर दे तो फिर वो करे। मगर हर केस में वो रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बदल साल भर का रेंट 3,000 के हिसाब से 36,000 आता है, तो 36,000 से ज्यादा के केस में आपको नहीं कराना है आरसीए से भी पूछ के, क्योंकि आरसीए फिर कह देगा
प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर।
अब वो ज्यादा ज्यादा आप कितना डिडक्ट कर सकते हैं, हाफ ना, बाकी तो उसको अब उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट कर दीजिए ना, क्या करिए फिर उस मकान को। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हैबिटेबल नहीं है तो आप उसको लेफ्ट कर दीजिए ना। तो यहां कह रहा है अगर आरसीए ने परमिट भी कर दिया तो मैक्सिमम कितना उसका डिडक्ट करेंगे, जनरल केस में 1/12 और एक्सेप्शनल केस में व्हेन परमिटेड बाय आरसीए 1/6 है ना, कितना हाफ,
वही वही 1/2
1/2 ना, यानी 6 महीने के किराए के बराबर आप रिपेयरिंग में लगवा सकते हो भी आरसीए से पूछ के। तो ये 1/12 मैंने देखा है कि ये पूछा गया कई बार, 1/12 ऑर्डिनरी केस में 1/12 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में 6 महीने का रेंट यानी हाफ लिया सकता, ठीक है।
सेक्शन 38, कटिंग ऑफ और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज।
हाँ, कह रहा एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज मत विदहोल्ड कीजिए, क्योंकि उससे बात बनेगी नहीं, सीधे आरसीए के यहाँ ऐसे मैटर पे जाइए। तो बताइए
सब सेक्शन 1, No landlord, either himself or through any person purporting to act on his behalf, shall withhold, without just and sufficient cause, cut off or withhold any essential supply or service enjoyed by the tenant in respect of the accommodation let to him.
कह रहा है लैंडलॉर्ड कभी भी टीनेंट का जो इंजॉयमेंट का राइट है जिससे वो इंजॉय करता है वो सब असेंशियल्स, असेंशियल्स में बिजली पानी दोनों आएगा, उसको विधेल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अगर चक्कर दिया तो का 43 में जवाब आएगा, पेनाल्टीज है। हाँ,
सब सेक्शन टू, इफ अ लैंडलॉर्ड कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन द टीनेंट मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंप्लेनिंग ऑफ, सच कंट्रावेंशन। सब सेक्शन थ्री, इफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन इंक्वायरी फाइंड दैट द एसेंशियल सप्लाई और सर्विस एंजॉयड बाय द टीनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एकोमोडेशन वॉज कट ऑफ और विदहेल्ड बाय द लैंडलॉर्ड विदाउट जस्ट एंड सफिशियंट कॉज, इट शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड टू रिस्टोर सच सप्लाई और सर्विस।
ठीक है, अगर आर सी ए को लगता है कि जो इन्होंने एसेंशियल्स विदहेल्ड किया है वो गलत है, तो आरसीए फिर किसको लैंडलॉर्ड को ऑर्डर देगा? अच्छा, जब भी हम कहेंगे ऑर्डर देगा ये करेगा, आपके दिमाग में आ सकता है कि ना करे तो सब तो का जवाब कहाँ मिलना है? 43 में पेनाल्टीज के रूप में मिलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर ऐसा असेंशियल था विदाउट एनी रीजन करा है तो फिर सीधा सीधा है कि आरसी ऑर्डर करेगा लैंडलॉर्ड को रीस्टोर द एसेंशियल्स ऑफ द टीनेंट। ठीक है,
सब सेक्शन फोर, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट दैट कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज ए बी पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय द टीनेंट इफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन टू वॉज मेड फ्राइवलसली और वेक्शियसली, बी पेड टू द टीनेंट बाय द लैंडलॉर्ड इफ द लैंडलॉर्ड हैज कट हैड कट ऑफ और विदहेल्ड द सप्लाई और सर्विस विदाउट जस्ट एंड सफिशियंट कॉज।
बिना जस्ट और सफिशियंट कॉज के अगर किया तो कितना रुपये का कंपनसेशन है? 50 रुपया। बड़ा इनाम रखे है सरकार हम पे। एक डायलॉग सुने हो ना आप लोग शोले फिल्म में, ना क्या था कि अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, तो कहा 50,000 सर, है ना, सांबा बोलता है सर इट इज़ अ 50,000 अवार्ड फॉर यू फॉर अरेस्ट यू आइदर लाइव और डेड एज द केस मे बी। ये नहीं, कुछ नहीं लिखा, यानी 50 ही रुपया टोटल है। ये पता नहीं क्यों इसको रिवाइज नहीं किया, क्योंकि और जो एमपी के एसी एक्ट में है अकोमोडेशन एंड कंट्रोल, उसमें सब में देखो 1,000 के नीचे का कोई 5,000 50,000 बार, इसको रिवाइज नहीं किया है। तो इसको पता नहीं, नहीं निगलेक्ट कर गए होंगे, नहीं इसने इतना मैटर, हम लोग इतना प्रिंसिपल पे देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इतना मैटर कोई डिस्प्यूट में, जिससे बच्चे पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डिस्प्यूट आता होगा। तो हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे?
38।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, मंडे से हम लोग की आईपीसी तो चालू होगी ही, मगर एज अ गार्जियन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोटिस टू यू ऑल, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड वेव ऑफ कोरोना। शायद तीसरी लहर आ गई है या आने वाली है, आ ही गई है, तो थर्ड वेव आ चुकी है। आप सब भी जितना बच्चे सुन रहे हैं वो तो खैर बहुत ही चीता हैं, है ना, मोबाइल पे सुन रहे हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, तो खैर उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब मुस्कुरा रहे होंगे, अरे सर हम लोग पहले से अटेंटिव हैं, आप बताएंगे तो भी। फिर भी एज अ हेड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू ऑल अलर्ट एंड कॉशन, कि कोई भी अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा चतुर चीता या बड़ी हाई इम्यूनिटी वाला मत समझे, तैराक ही हमेशा पानी में डूबते हैं, जो तैरना नहीं जानता वो पानी में जाता ही नहीं है। तो सिंपल केस समझिएगा, कोई भी प्रिकॉशंस मत छोड़िएगा। देखिए हम लोग हंसी मजाक सब ठीक है, बट वी आर द एग्जाम्पल्स ना, किसी भी केस में आप लोग क्लास में आए होंगे तो हम लोग ने मास्क अनमास्क नहीं होने दिया, कभी हटाया नहीं। दिस इज आवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू यू ऑल, कि आप कभी भी अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट एक्स्ट्रा इम्यूनिटी वाला मत समझिए, बहुत केयर रखिए। अभी तो लोगों ने कहा है अन हार्मफुल नहीं है जो भी है, मगर जैसा अंकित सर बता रहे हैं पिछले बार भी यही हुआ था,
म्यूटेट कर सकता है ना अभी?
हाँ, वो म्यूटेशन हो सकता है। ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन से भी इसका क्या म्यूटेशन होगा अभी भी इसको लेके बहुत बम्पर कंफ्यूजन है। तो इसलिए इट इज आवर ड्यूटी टू टेक अ प्रिकॉशन फॉर योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं, अपने आप की जिम्मेदारी रखते हुए हम सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए। और हम लोग की क्लास रेगुलर चलती रहेगी, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन और बोथ एज द केस में भी, और अभी तो दोनों ही चलेगी। तो ध्यान रखिए, थर्ड वेव आ चुकी है, आप सबको, हम सबको सरकार के साथ सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं।
सेक्शन 39, कंट्रोल ऑफ लेटिंग।
कंट्रोल ऑफ लेटिंग, देखिए, एक मैंने, चूंकि MPSC को मैंने एज अ टीचर नहीं पढ़ा था, अभी 10 साल में पहली बार, मुझे लगता पहले अपने पढ़ने के लिए तो पढ़े ही थे, तो मैंने एक चीज बोला था आप लोग को इसके फर्स्ट लेक्चर में कि जैसा उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट बना है उसमें अलॉटमेंट भी कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना, हम लोग डिस्कस किए थे कि DM अलॉट करेगा, और अगर वेकेंट है रिलीज करना, अलॉट करना सेक्शन 16 में, कोई भी अगर वेकेंट है तो उसको अलॉट करता है। हमने कहा था ऐसा कुछ संभवतः मध्य प्रदेश के AC एक्ट में नहीं दिया है, ठीक है, मगर नहीं, 39 एंड 40 जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि अगर आपका प्रीमाइसेस वेकेंट है तो इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर से सुनिएगा, अगर मध्य प्रदेश में आपका एकोमोडेशन खाली है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब यही देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलॉट दैट प्रीमाइसेस टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि पहले गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एकोमोडेशंस नहीं थे, तो उन्हीं सर्वेंट्स के लिए ही रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया कि सरकारी कर्मचारियों को कहाँ दिया जाए। तो कह रहा अगर आपका मकान खाली हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसका सूचना किसको दे दें, कलेक्टर को, और कलेक्टर उसको अलॉट कर देगा और आपको स्टैंडर्ड रेंट मिलने लगेगा। जब उसकी नौकरी छूटेगी या वो ट्रांसफर होगा तो तुरंत 7 दिन में वो छोड़ देगा। कितने दिन में छोड़ देना होगा उसको? 7 days ऑफ ट्रांसफर और रिटायरमेंट। तो अब वही हम लोग प्रोविजन पढ़ने चल रहे हैं स्पेशल, कि आपका वो मैं करेक्ट कर दूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा बोला था कि अलॉटमेंट का प्रोविजन नहीं दिखता है, मगर है, अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देखा है। तो सेक्शन 39 को हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने चले, बताइए 39।
सेक्शन 39, कंट्रोल ऑफ लेटिंग, सब सेक्शन 1, द कलेक्टर और सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर एज मे बी ऑथराइज बाई हिम इन दिस बिहाफ हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू इन दिस चैप्टर एज द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर अ लैंडलॉर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन ऑफ एनी एकोमोडेशन विच हैज फॉलन वैकेंट और इज लाइकली टू फॉल वैकेंट एंड ऑल्सो रिक्वायर हिम टू लेट और नॉट टू लेट सच एकोमोडेशन except in accordance with such order as he may give in accordance with the provisions of this chapter.
तो कह रहा है कलेक्टर या ये लोग authorized authority कहलाएंगे, कलेक्टर या DC से नीचे का बंदा ना हो, डिप्टी कलेक्टर के नीचे का बंदा ना हो, इनके पास पावर है कि ये ऑर्डर प्रोमलगेट कर दें, दे हैव अ राइट ऑर्डर, दे हैव अथॉरिटी टू प्रोमलगेट एन ऑर्डर टू ऑल द लैंडलॉर्ड ऑफ अर्बन accommodations एंड मेक their ड्यूटी ऑफ landlord टू inform रिगार्डिंग द vacancies इन their premises, द premises which इज vacant और विच इज गोइंग टू बी vacant, इन दोनों के बारे में सूचना किसको दिया जाए, कलेक्टर या जैसा अथॉरिटी जो कि DC के नीचे का ना हो। तो अगर ये ऐसा ऑर्डर प्रोमलगेट कर देते हैं, इफ यहां वर्ड है, अगर ऐसा ऑर्डर है उस एरिया में तो फिर आपको ये ड्यूटी बनती है कि बताइए कि हमारा मकान खाली है, और तब कलेक्टर बताएगा कि ये किसको दिया जाए, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे। और चलिए
Subsection 2, if any accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is required for occupation by any person holding an office of profit under the union or state government or any person in the service of a local authority. The Madhya Pradesh Electricity Board,
etc. तो वो सरकारी कर्मचारियों को ही अलॉट किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे मकान को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसको अलॉट कर देगा? गवर्नमेंट सर्वेंट. एक लाइन में बस, और ज्यादा नहीं. हाँ, और चलिए
अब सीधे इसमें फिर आ जाइए सबसेक्शन 5 पे.
39 है ना?
हाँ,
39. सेक्शन 39 का सबसेक्शन 5 सर बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है.
नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए एनी अकोमोडेशन यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज द मंथली रेंट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 रुपीज.
अरे, यानी ऐसा छोटा सा मकान जिसका किराया कितना हो, 25 रुपया से कम हो स्टैंडर्ड, फिर उसके बारे में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है.
बी एनी अकोमोडेशन यूज फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पजेज द मंथली रेंट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज.
अगर वो दुकान उकान है तो 50 रुपया.
सी एनी अकोमोडेशन विच हैज फॉलन वैकेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्यूपेशन बाय द लैंडलॉर्ड.
ठीक है, अगर खुद पर्सनल यूज के लिए खाली कराया तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. ठीक है,
और डी है एनी अकोमोडेशन बिलोंगिंग टू अ लोकल अथॉरिटी कंपनी और अ फर्म एंड बोनाफाइड इंटेंडेड सोलली फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स ऑफिसर सर्वेंट एंड एजेंट्स.
ठीक है, कह रहा सबसेक्शन 5 देखिए इसका कह रहा है 39 का. पहले हम लोगों ने एक जनरल पढ़ा कि कलेक्टर या जो अथॉरिटी नॉट बिलो द डीसी उनके पास पावर है, दे कैन ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक ऑर्डर प्रोमलगेट कर दें कि भाई यहाँ पे जो भी मकान अकोमोडेशंस अगर वेकेंट हो रहे हैं तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच वेकेंसी टू कलेक्टर आर डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. उसके बाद उस मकान को बताए किसको दिया जाएगा, तो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं उन्हीं को आप ये दे देंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों को. फिर कह रहा है कि ये 39 अप्लाई नहीं होगा कुछ एकोमोडेशंस पे, और पूछा जाए कि 39 किन एकोमोडेशंस में, यानी किन के बारे में सूचना देने का हमारा लाइबिलिटी नहीं है, तो कहा जिसका किराया अगर रेजिडेंशियल है तो 25 रुपीज पर मंथ, अगर ये नॉन रेजिडेंशियल है तो 50 रुपीज, या इस एक्ट में आपने अपने लिए उसको खाली करवाया है, अभी हमने पूरा पढ़ा है 12 और 23 में ए से लेकर, अपने लिए तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. तो पूछा जा सकता है कि 39 की जो ड्यूटीज हैं लैंडलॉर्ड की टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग वैकेंसीज वो किन अकोमोडेशन पे अप्लाई नहीं होती है, तो हम लोग इसका सबसेक्शन 5 बताएंगे. ठीक है,
ठीक. अब 40, सेक्शन 40 अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन. इसमें ज्यादा नहीं जानना है, बस कलेक्टर और द अथराइज्ड ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल अलॉट एकोमोडेशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स.
ठीक है, कलेक्टर वही उस खाली मकान को या डीसी अथराइज्ड जो ऑफिसर है वो अलॉट कर देगा. अच्छा, जब ये लोग देते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, जब हम लोग देते हैं किसी को तो वो कहते हैं कि हम लोग टीनेंट रखे हैं, और जब ये लोग देते हैं तब उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर, और जो लेता है उसको अलॉटी कहते हैं टीनेंट को. तो ध्यान रखिए, तो जब कलेक्टर किसी को देता है मकान तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑर्डर. हाँ,
सब सेक्शन 1 इसका कहता है द एकोमोडेशन शैल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. नंबर 1, पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट.
यूनियन आर स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी कर्मचारी.
फिर वही इसका सेकंड, वही पर्सन सर्विस लोकल अथॉरिटी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोर्ड गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को इस प्रिफरेंस पे. सबसे पहला प्रिफरेंस होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, फिर लोकल अथॉरिटीज के, फिर बोर्ड्स और फिर कॉरपोरेशन, वही पूरी लिस्ट बनी होगी. इस ऑर्डर में कलेक्टर अलॉट करेगा. ठीक है,
सेक्शन 40 कैपिटल ए स्पेशल प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी.
इमरजेंसी में तो सेना होना को दिया जाएगा, भाई इमरजेंसी में किसको मकान दोगे? आप लोग लॉजिकल जानिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी सेना या एडमिनिस्ट्रेशन का ही। अभी अभी मेडिकल इमरजेंसी टाइप तो लगी थी जब कोरोना टाइम था, तो उस मेडिकल इमरजेंसी में किसी को देना हो तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि या तो प्रशासन के लोगों को मिलेगा प्रायोरिटी, या मेडिकल ऑफिसर्स को, जो भी मेडिकल वॉरियर्स हैं उन्हीं को तो मिलना था। तो यहाँ भी कह रहा अगर इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में फिर कलेक्टर सीधे अलॉट कर देगा डिफेंस फोर्सेस को, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को।
सेक्शन 41 कुछ खास नहीं, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन अलॉटेड एकोमोडेशन टू पे रेंट,
वो तो देगा ही रेंट।
42 कहता है सेक्शन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, ये इम्पोर्टेंट है।
टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, ये कौन सी टेनेंसी है? जो डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अलॉटमेंट किया है। तो एक सरकारी कर्मचारी को अलॉट किया गया मकान, तो उस सरकारी कर्मचारी के जब नौकरी चली गई या ट्रांसफर हो गया तो कितने दिन में वो खाली कर देगा? वही 7 डेज मेरे ख्याल से है, मगर आप पढ़ के बता दीजिए।
सेक्शन 42 टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, द टेनेंसी ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड इन एकोमोडेशन एन एकोमोडेशन बाई वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस शैल टर्मिनेट ऑन द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर रिटायरमेंट और अदरवाइज एंड द सेट पर्सन शैल वेकेट सच एकोमोडेशन विद इन 7 डे ऑफ सच डेट।
7 डे, चाहे ट्रांसफर हो गया, चाहे रिटायर हो गया, या निकाल दिया गया सेवा से, तो कितने दिन के भीतर? 7 डेज, ये इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि 7 डेज ये फर्स्ट ही और लास्ट, मेरे ख्याल इसके अलावा कहीं 7 दिन नहीं मिला हमें। तो ये 7 डेज में जो अलॉटमेंट और है उसका, अगर अलॉटी रिटायर हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, या मेरे ख्याल से वो रिमूवल होगा सर्विसेज से, तो फिर वो 7 दिन के भीतर आपको तुरंत खाली कर देना होगा। नहीं करेंगे तो आगे होगा पीनल प्रोविजंस लिखा होगा ना, ढेर सारा किराया दीजिए।
प्रोवाइडेड दैट द कलेक्टर,
हाँ बेटा
सर, अगर नहीं खाली करता है तो भी एक इविक्शन ग्राउंड तो बन ही जाएगा ना।
हाँ, वो तो इविक्शन का ग्राउंड तो बन जाएगा, मगर उसके पहले ही कलेक्टर, देखिए इसमें पीनल प्रोविजंस है, वो तो कलेक्टर की ड्यूटी है ना कि अलॉटमेंट को आप खाली कराए, तो एकदम सही, वो इविक्शन का ग्राउंड भी बनेगा। और मगर यहाँ इविक्शन कराने का काम फिर कलेक्टर करेगा ना, अलॉटमेंट किसने किया है? कलेक्टर ने, हमने तो दिया नहीं किसी को, तो यहाँ लैंडलॉर्ड को नहीं अब पेन लेना है, अब इसको किसको पेन लेना है? कलेक्टर हैज़ टू टेक अ पेन। तो देखिए आगे इसीलिए लिखा प्रोवाइडेड, हाँ,
Provided that the collector or the authorized officer may, for reason to be recorded in writing, extend the period for vacating the accommodation by a further period not exceeding 4 months.
ठीक है, 4 महीने तक का समय दे सकता, अगला कह दे कि नहीं साहब संभव नहीं है, जहां हमारा ट्रांसफर हुआ जिस शहर में वहां हमें फर्दर कोई अकोमोडेशन नहीं मिला, तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे 4 महीने तक, 7 दिन की जगह उसको क्या बना दिया जाएगा? 4 मंथ, ठीक है।
पेनाल्टीज
43, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना अभी तक पढ़ रहे थे कि अगर हम एक्सेस रेंट ले लें तो क्या होगा, और किराएदार कहे हमें पैसा दो तब हम खाली करेंगे, ऑर्डर के बाद भी नहीं खाली कर रहा है, तो 2 साल के भीतर ही आपने अपना मकान खाली कराया कि हमको ज़रूरत है, याद है सेक्शन 17 साहब, हमको ज़रूरत है, और फिर 2 साल तक आप, 2 साल के भीतर ही आपने किसी और को उसको क्या दे दिया, रिलेटिंग कर दिया, तो इन सब चीजों में जो पेनाल्टीज है वो सेक्शन 43 में दी गई है, इसीलिए हमने कहा था अपनी एनर्जी, अपना टाइम इसके लिए सेव रखिए, क्योंकि 43 में क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन 43 के क्वेश्चंस हमने देखा है काफी आते हैं। चलिए तो हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है,
तो फिर सर उसमें भी क्या ये 4 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा कि 7 डे में ही खाली करना होगा?
नहीं, वो चूंकि ये दे दिया ना कि ये डिस्क्रिप्शन किसकी दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो जो सिचुएशंस हैं इक्विटेबल सिचुएशंस हैं, उन सारे इक्विटेबल सिचुएशंस को डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है 4 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये उसी में आ जाएगा, वो अलाउ कर देगा कि ठीक है ऐसी चूंकि सिचुएशन आई है तो इस सिचुएशन में आप मकान होल्ड कर सकते हैं 4 महीने, या बढ़ा भी देते हैं क्योंकि फिर तो प्रॉपर किराया मिलने ही लगेगा ना, तो वो 4 महीने तक इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए दिया गया है। अब आइए पेनाल्टीज को आराम से पढ़ाते हैं। पेनाल्टी क्लॉज
सेक्शन 43 पेनाल्टीज सब सेक्शन 1। इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 7 और एज फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 ही शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू सम विच एक्सीड्स द अनलॉफुल चार्ज क्लेम्ड और रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट बाई 1000 रुपीज और विद बोथ।
कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा लैंडलॉर्ड ने क्लेम किया ले लिया तो उस लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट कितना, मतलब कि पनिशमेंट भी है, ये तो सिविल मैटर था, मगर कह रहा है कि यहाँ पनिशमेंट भी, मैंने क्या कहा पेनाल्टी क्लास इम्पॉर्टेंट है, तो अगर लैंडलॉर्ड ने स्टैंडर्ड रेंट जो बताया गया उससे ज़्यादा लिया तो 3 months सिंपल इम्प्रिजनमेंट और या जो किराया लिए हो एक्सेस वो प्लस 1000 रुपीज आपको क्या मिलेगा कंपन सेशन, जो भी टीनेंट है उसको ये मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए ये 3 month इम्प्रेजेंटमेंट, इसको एक बार 3 month और क्या लिखा है
3 months और विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू अ सम विच एक्सीड्स द अनलॉफुल चार्ज क्लेम्ड और रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट बाय 1000 रुपीज और विथ बोथ।
अच्छा, कह रहा है जो भी आप एक्सेस में लिए होंगे उन सब को आपको दिला दिया जाएगा। तो यहाँ जो पूछा जाता है वो 3 month पूछा जाता है, कितना सिंपल इम्प्रिजनमेंट का कारावास है 3 महीना, ठीक है। हाँ,
सब सेक्शन 2। इफ एनी पर्सन कंकरेंसेस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 ही शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 6 months or with fine which may extend to a sum which exceeds the amount or value of unlawful charge claim or received under the said subsection 2 or subsection 3 as the case may be by 5000 rupees or with both।
अच्छा, तो अब जरा सा सबको सेक्शन 6 को की एक बार रिमाइंड भी करना है। सेक्शन 6 का कह रहा था 2 और 3 का अगर कंटरवेंशन होगा तो फिर 6 महीने की सजा है। तो जरा सेक्शन 6 हम लोग देखें एक बार, फिर से रिवाइज करें जिससे हम सबको याद होता जाए।
सेक्शन 6 कहता है
टीनेंट के लिए
अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। सब सेक्शन 2 No person shall, in consideration of the grant, renewal or continuance of a tenancy or sub-tenancy of any accommodation, A, claim or receive the payment of any sum, premium or pagri or claim or receive any consideration whatsoever in cash or in kind in addition to the rent
or... ये तो हम लोग पढ़ी चुके हैं, 2 और 3 बताइए।
3 है, it shall not
अच्छा,
be...
अच्छा, 2 था।
हाँ, ये 2 का ही एक था, भी कहता है एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग
3 बताइए।
इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द टीनेंट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द टीनेंट और सब टीनेंट टू क्लेम और रिसीव एनी पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रिलिंक्विशमेंट ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ हिज टेनेंसी और सब टेनेंसी एज द केस मे बी ऑफ एनी अकोमोडेशन।
ठीक है, तो कह रहा है कि सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 कन्फाइन करता है लैंडलॉर्ड को कि अगर आप एक्सेस वगैरह ले रहे हैं तो, और 3 में कहता है कि अगर टीनेंट लैंडलॉर्ड से पैसा ले रहा है कि ठीक है हम आपका मकान खाली कर देंगे या किसी और के फेवर में दे देंगे, बट हमें इतना पैसा चाहिए। तो इन दोनों केसेस में कितने महीने का इम्प्रिजनमेंट है?
6 मंथ।
तो सेक्शन 6 का वायलेशन करेंगे तो 6 मंथ, वैसे भी सरल हो गया ना, सेक्शन 6 का वायलेशन करने पे कितना आपको देना है? 6 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जो बताया, और बताइए। थर्ड
सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 43, इफ एनी टेनेंट सब लेट्स असाइंस और अदरवाइज पार्ट्स विद द पोजीशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज।
अच्छा, अगर किसी टेनेंट ने सब टेनेंट रख लिया, सबलेट कर दिया और बिना लैंडलॉर्ड से पूछे, यानी सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 स्मॉल बी में था ना, नोट, इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ इविक्शन। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसे टेनेंट को जिसने सबलेट किया है कितना रुपया का फाइन देना पड़ेगा? 1000 रुपीज फाइन। ठीक है, और चलिए
अनलॉफुली सबलेट,
हाँ वो जेल नहीं जाएगा, केवल 1000 रुपया फाइन। हाँ,
3 small a ऑफ सेक्शन 43, इफ एनी लैंडलॉर्ड रीलेट्स और ट्रांसफर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ।
कह रहा है कि सेक्शन 17 का आपने कंट्रावेंशन किया, याद होगा, अगर आप अपने पर्सनल बोनाफाइड यूज के लिए आपने खाली कराया मकान, तो हम लोगों ने सेक्शन 17 में पढ़ा था कि फिर आप उसको 2 साल तक लेटिंग या रीलेटिंग नहीं करोगे। अगर ऐसा कर ही दिए तो, यानी सेक्शन 17 का वायलेशन करते हुए खाली तो कराए कह के कोर्ट से कि साहब हमें पर्सनल जरूरत है, और फिर किसी और को आप दे रहे हो, किराएदार एक और रख रहे हो, तो ऐसे केसेस में ये पेनाल्टी क्लॉज अट्रैक्ट होता है और कहता है 3 महीना, कितना था 3 मंथ ना, 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। इसी तरह 23A वाला भी है कि अगर आपने स्पेशल थे लैंडलॉर्ड और आपने खाली कराया और 2 साल के भीतर फिर से रिलेट कर दिया, तो भी देखिए वो बी में आएगा, वैसी वैसा होगा।
फोर्थ
बी है ना,
नहीं नहीं है, सब सेक्शन 4 है।
नहीं, अच्छा हाँ 4 बता दिए।
इफ एनी लैंडलॉर्ड रीलेट्स और ट्रांसफर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 23G,
जी वाला वही स्पेशल वाले हैं,
विद
3 months
imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both।
तो ये 3 और 4 तो एक ही हो गया, चाहे आप ऑर्डिनरी लैंडलॉर्ड थे और आपने पर्सनल बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए सब सेक्शन ई में खाली करवा लिया और फिर सेक्शन 17 का कंटावेन किया, यानी 2 साल के पहले ही फिर से रीलेट या री एंट्री करा दी किसी को, तो 3 महीने की जेल है। और अगर आप स्पेशल लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट वाले थे और अपने पर्सनल यूज के लिए खाली कराए हैं जी के हिसाब से, हो फिर 2 साल के भीतर किसी को दे दिए, तो कितना साल का है? वही 3 महीना। तो 3 और 4 एक ही है, अलग से नहीं है, बस 3 मंथ याद रखना है। और चलिए
सब सेक्शन 5, इफ एनी लैंडलॉर्ड कंट्रावीन्स द प्रोविजंस सो प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 38, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months।
3 महीना याद ज्यादा रखना हमको, कि अगर वही उसकी इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल सब आपने काट कूट दिया है, वही है ना 38 अभी पढ़े थे,
विद होल्डिंग ऑफ एसेंशियल ऑफ और विद होल्डिंग ऑफ एसेंशियल,
तो 3 महीने की जेल है। ठीक है,
सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 39, इफ सॉरी 43, इफ एनी पर्सन कंट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 और ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40A, ही शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ।
अच्छा मोटा मोटा अगर कहें तो 3 महीना ही है ना, 3 मंथ है, तो कह रहा है वही अगर आपका लैंडलॉर्ड ऑर्डर हो चुका है उस शहर में कि आप अपना अगर मकान खाली है तो आप उसका इन्फॉर्म करिए, और उसके बाद भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो नहीं वाले का जवाब कह रहा है कि फिर क्या इसमें प्रोविजन आएगा। ये आएगा 43 का सबसेक्शन 6 और कहता है ये 3 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो याद रखिए जो मैंने ज़्यादातर देखा एक जगह सेक्शन 6 वाले में 6 मंथ था, बाकी जगह पे क्या है 3 मंथ है, और सब लेटिंग में 1000 पेनाल्टी है, उसमें कोई सजा नहीं है। चलिए
फिर है सेक्शन 44 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस।
अच्छा ये जो कह रहे थे ना ये 43 वाले पेनाल्टी माल्टी, ये कॉग्निजेंस कौन लेगा, कहाँ ये जाएगा मैटर, ये 43 वाला आरसीए के पास थोड़ी ना जाएगा। ये जो ऑफेंसेस हैं 43 वाले, इन सब का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं। देखिए
सब सेक्शन 1 नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट।
तो ये 43 में जो आप ना ऑफेंस मान के चल रहे हैं हम लोग और 3 महीने, तो 43 का जितना मैटर है ये आरसी और सीए के यहाँ नहीं जाएगा, किसके यहाँ जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ध्यान रखिए ये जो 43 का है ये कई बार पूछा गया 44 में कि कौन कॉग्निजेंस लेगा, किसके यहाँ मैटर आएगा, किसके यहाँ ट्राइबल होगा, तो ये जेएम फर्स्ट क्लास। तो कोर्ट कौन सी होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 43 से अटैच है 44 और कह रहा है कि जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो जेएम फर्स्ट क्लास द्वारा।
सब सेक्शन 2 नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस हैज बीन मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस।
ठीक है तो 3 महीना इसमें लिमिटेशन है इस ऑफेंस की, जितना ये ऑफेंस की बात 43 में किया गया है इन सब के लिए जो कॉग्निजेंस पावर पे लिमिटेशन लगाई है वो 3 मंथ्स की है। ठीक है
सब सेक्शन 3 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 32 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू पास अ सेंटेंस ऑफ फाइन एक्सीडिंग 2000 रुपीज ऑन अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट।
ये नहीं पढ़ने वाला और चलिए इसके बाद भी कोई सेक्शन बचा है,
इसके बाद है चैप्टर 7 मिसलिनियस, इसका सेक्शन 45 कहता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स।
आरसी वाले मैटर में तो वैसे भी बार होता है, इसको पटिक नहीं करना है।
और फिर उसके बाद सेक्शन 46 अबेटमेंट ऑफ कंट्रावेंशन पनिशेबल एज कंट्रावेंशन,
छोड़ दीजिए भी नहीं,
बेकार है। 47 लाइबिलिटी ऑफ कंट्रावेंशन इन केस ऑफ कंपनी फर्म एटसेट्रा, भी बेकार है। सेक्शन 48 रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू बी अ पब्लिक सर्वेंट,
ठीक है।
और 49 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, 50 है पावर टू मेक रूल,
स्टेट गवर्नमेंट ही तो बनाए,
स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है
रूल्स बनाए।
और इसका सब सेक्शन 3 पूछा जाता है कभी कभी, ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड ऑन टेबल ऑफ द असेंबली,
ठीक है वो तो रूल्स बनाएंगे तो असेंबली।
सेक्शन 51 रिपील एंड सेविंग्स है,
छोड़ दीजिए
फिनिश।
अच्छा 7 चैप्टर थे ना, कितने थे इसमें, 7। मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट, ये अगर एमपी को आप चाहते हैं विक्ट्री करना वहाँ पर तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने भी आउट ऑफ वे जाके इसको पढ़ाया, रीज़न क्या है कि एमपी में रेगुलर वैकेंसीज, क्योंकि वहाँ रेगुलरली लोग टर्मिनेट होते हैं। हम बताए थे ना वहाँ एमपी में क्वालिटी ऑफ द जजमेंट चेक करते हैं, और उत्तर प्रदेश में क्वांटिटी। उत्तर प्रदेश में कहता है इतना निर्णय दीजिए, मध्य प्रदेश में पूरे जिले में उतना केस नहीं होगा जितना यहाँ के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही सीधे हैं, मध्य प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म वहाँ है, इसीलिए रेगुलर वैकेंसी आती है। उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये 54-58 वाली वैकेंसी काम ही नहीं चलेगा, इस 50-100 से नहीं, यहाँ सीधे क्या कराते हैं 600-500-400। जैसे ना जज ना भर्ती कर रहा हूँ, जैसे कोई क्लरिकल पोस्ट पे भर्ती, सीधी भर्ती हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पेशेंट ज़्यादा, जज की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ अपराध ज़्यादा होता है, एज पर द सोसाइटी एज पर द लॉ में भी। इसको बहुत पुराना मैगजीन है, इस पर तो ध्यान रखिए। ये हम लोगों ने 7 चैप्टर्स का था, 51 सेक्शंस के थे, जिसमें लास्ट सेक्शन की अगर बात करें 43, जो अभी हम लोग 43 और 44, इसको आपने पहले ही टिक कर लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलॉटमेंट की हम लोगों ने बात की थी, फिर 41 में कुछ टिक किया, 39 में उसके ऊपर के तमाम चैप्टर्स थे, जैसे रेंट से रिलेटेड चैप्टर सेकेंड था, उसमें स्टैंडर्ड रेंट था, एक्सेस हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर क्लेम कर लिए तो उसका जवाब कहाँ आ रहा, सीधे 43। हर चीज़ के कंटावेंशन का जो आंसर था वो कहाँ मिला हम लोग को, 43 में मिला। फिर इविक्शन की बात आई तो इविक्शन 3rd चैप्टर में था और 3rd में स्पेशल मैटर। 4th में हम लोग ने देखा कि साहब अगर रेंट वेंट ना ले रहे हों, रूठ गए हों मकान मालिक, तो किराएदार कहाँ जाए, तो आरसीए के पास जाए, उसका सारा प्रोविजन हमने पढ़ा। फिर आरसीए के बारे में जाना हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में, और आरसीए कौन हो सकता है, उसकी ऑर्डर की अपील कहाँ होगी, 31 में भी हम लोग जाने। फिर हम लोगों ने 34 ऑनवर्ड्स पढ़ा, सेकेंड अपील के लिए 32 में पढ़ा, उसके बाद फिर उस चीज़ को, एक तो एसेंशियल्स आप विधहेल्ड नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा कि साहब उसमें 3 महीने का क्या मिलेगा आपको, 43 में पनिशमेंट मिलेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर खाली है तो उसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, अगर ऐसा ऑर्डर उस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अलॉट कर देगा। हाँ, अलॉट करेगा वो सब तो ठीक है, मगर टर्मिनेशन कब होगा, तो जिस दिन उसकी रिटायरमेंट ट्रांसफर एटसेट्रा हुआ, तो विद इन 7 डेज और खाली करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्रिशन दिया है कुछ स्पेशल मैटर में 4 महीना 4 मंथ तक बढ़ाया जाएगा। 43 में पेनाल्टी क्लास है, इस सारे जो पेनाल्टी क्लास का कॉग्निजेंस लेने का जो जिम्मेदारी दिया है, इट हैज गिवन ये तो GM 1st class और विद इन 3 मंथ ऑफ द कमिटेड दिस ऑफेंस, इसको ऑफेंस बताया गया। इस तरह से ये हमारे 3 लेक्चर्स का जो सीरीज था MPAC का, वो हम लोगों ने एंड किया। दिस इज एंड फॉर अस एंड बिगनिंग फॉर यू ऑल स्टूडेंट टू मेक अ गुड नोट्स एंड मेक 100% क्लियरेंस। देखिए, इफिशियंसी बहुत चाहिए, समय के हिसाब से चलना होगा, परफेक्शन चाहिए, एकदम परफेक्शन चाहिए। किसी भी जॉब में आपको पाना है तो यू मस्ट बी अ परफेक्ट मैन, लाइक आमिर खान। ना आमिर खान को क्या बोलते हैं, मिस्टर परफेक्ट, क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्टिंग में साल भर में एक बनाता है, मगर वो जिस भी एक्टिंग में आता है एकदम दिलीप कुमार की तरह, वही स्थिति है, फिर उसमें उसी करेक्टर को जीने लगता है। हमने भी अगर नौकरी पाना है तो शिद्दत से 6 महीना बस पढ़िएगा, लिमिटेशन पीरियड कितना है कुल, 6 महीने में 1 नौकरी पक्की है, और बाकी 60 साल में भी ना पाओगे। अगर बिना मन के पढ़ाई किए, तो जब पढ़ो तो फिर पूरी तरह पढ़ लो, और जब ना पढ़ने का मन हो तो फिर उस समय मिस्टर को याद मत करना। क्यों? क्योंकि बी अ योगी, योग क्या सिखाता है, और कुछ नहीं सिखाता है, अलर्टनेस देता है। योग का काम क्या है बेटा, टू बी अलर्ट, टू बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। पढ़ा रहे हैं अमित सर, यहाँ बैठे हैं, याद आ रही है घर पे क्या चल रहा होगा, तो घर ही पे जाओ ना, क्योंकि आप नहीं लोगे वैकेंसी को, इसका फायदा तो कोई और ले लेगा ना, बहुत बच्चे हैं। तो आपको बस इतना सीखना है, योग सीखना है, सारी प्रॉब्लम छोड़ के। योग का मतलब क्या है? टू कनेक्ट। योग का मतलब क्या भाई? हम लोग आज अच्छा ये एंड हो चुका है, जो जाना चाहे जा सकते हैं, अब कोई नहीं जाएगा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस जितना बता दिए ना उसी को खूब नोट्स बना लीजिए।
रिकॉर्डिंग भी
नहीं, अभी क्यों बंद करोगे? अभी तो हम बकबक करेंगे, है ना? मेवा खाओगे तो साथ टुकड़ा भी तो जाएगा।
अरे हमारे पास जो इतनी जगह नहीं ना।
अच्छा आपके पास नहीं जगह, इट्स योर प्रॉब्लम। तो तुम हमें बिना बताए बंद कर दी होती रिकॉर्डिंग, हमें क्या करना है? तो खैर कोई नहीं, अंकित सर कह रहे हैं रिकॉर्डिंग कम है, मगर लास्ट मोमेंट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, योग मीन्स टू कनेक्ट। मोबाइल पे फोन मिलाते हो फलाने को तो ढिमकाने को तो नहीं लगता है ना, जिसको मिलाए उन्हीं को तो लगा। हमारे दिमाग को भी वही परफेक्शन बिलाइएगा, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय पढ़ाई ही करना, उसके अलावा कुछ और करोगे तो कुछ और ही करते रह जाओगे।
तो ये सेक्शन 43 पेनल्टी में, इसी सबसेक्शन 2 में,
हाँ बेटा
5000 रुपीज का फाइन है।
रुक जाना, बस रुकना। अब हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आयर का सिलसिला चालू होगा, क्लास में भी बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा इसके बाद हम लोग आईपीसी से, बस एक मिनट, हम लोग आईपीसी मंडे से ना, और अंकित सर नोट्स भी भेज देंगे इस पे, अभी हमारे पास प्रिंट होके नहीं आए, मगर आज रात या कल तक आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग नोट्स भी कलेक्ट कर लेंगे, और मंडे से ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आप लोग की इच्छा हुई, जो भी आपको सेफ लगे उस ऑप्शन पे चलिएगा, और मंडे से हम लोग इंटरेस्टिंग न्यू सेशन 2022 स्टार्ट करेंगे विद आईपीसी। तो चलिए, अच्छा किताबें आपके पास जो भी हैं वही रखिएगा, कोई नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किताब वाला काम कर देंगे, जब जरूरत होगी तो खुद बताएंगे, बस बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए, आपकी हो, आपके पापा की, दादा की, 1860 के बाद की कभी की होगी चल जाएगी। तो चलिए आप सब अब लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी जिसको सुनना होगा क्वेश्चन आंसर वो रिटेन है। थैंक यू वेरी मच। हाँ पूछो बेटा, 43 सबसेक्शन 2। हाँ